लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव में अयोग्य होने के भाव अपने में दीनता की एक अभिव्यक्ति है, जहां हम अपने को अपने गुणों या क्षमताओं के अनुरूप व्यवस्थित करने की चाह नहीं रखते, बल्कि नम्रता में अपने को ईश्वर के हाथों में अर्पित करते हैं, जिससे वे हमें एक साधन के रूप में अपने कार्यों के लिए उपयोग करें। नम्रता के इस मनोभाव की उत्पत्ति हमारे लिए तब होती है जब हम अपने जीवन में ईश्वरीय कार्यों की विशालता का अनुभव करते हैं, जो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक रूपों में अपने कार्यों को पूरा करते हैं, जिसकी आशा शायद ही हमने कभी की होगी। वहीं धर्मग्रंथ बाइबल अपने कार्यों के निष्पादन हेतु हमारे लिए ईश्वर के उन चुनावों का एक चिट्ठा प्रस्तुत करता है, जहां हम ईश्वर के द्वारा पापियों और कमजोरों को बुलाए जाने की बातें सुनते हैं। वे जो समाज के हाशिए में रहते, जो अपने को कमजोर और पापी होने का अनुभव करते हैं, उन्हें ही ईश्वर ऊपर उठाते और अपनी प्रेरिताई के लिए सक्षम बनाते हुए दुनिया में भेजते हैं। श्रोताओं, वर्ष के पांचवें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा चुने और बुलाए जाने वालों की अयोग्यता और नम्रता की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने हृदय को टटोल कर देखें कि ईश्वर के द्वारा हमारे बुलाए जाने पर हमारे मन और हृदय में किस तरह के भाव हिलोरे लेते हैं। क्या ईश्वरीय कार्य की पूर्ति हेतु हमारा चुना जाना हमें आश्चर्यचकित करता है, जहां हम अपनी नम्रता में बने रहते हुए आनंद का अनुभव करते हैं? क्या हम ईश्वर के आश्चर्यजनक कार्य का अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा वे हमें अपना सहचर्य प्रदान करते हैं?
एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी दो नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने में ईश्वर के प्रति अनुग्रह में किए गए कार्यों को देखने और जानने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम जोश और उत्साह में अपनी बुलाहट और ईश्वर से मिले उत्तरदायित्व को ईश प्रजा की मुक्ति हेतु निर्वाहन कर सकें। श्रोताओं, नबी इसायस के ग्रंथ से लिए गए आज का पहला पाठ हमें दिव्य दर्शन में नबी के बुलावे का चित्रण प्रस्तुत करता है। नबी विश्व मंडल के प्रभु को अपने सिंहासन में विराजमान पाते हैं, जिनकी सेवा पूजा की जाती है। वे ईश्वर के निवास और उनकी महिमा के मध्य अपने को अशुद्ध होठों वाला मनुष्य होने का अनुभव करते और अपनी अशुद्धता के कारण अपने में नष्ट होने के भय का अनुभव करते हैं। लेकिन ईश्वर अपना दूत भेजकर अंगारे से नबी के होठों का स्पर्श करते हुए उनका शुद्धिकरण करते और उन्हें अपने कार्यों के लिए भेजते हैं। श्रोताओं, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में दुनिया में हम सबों के भेजे जाने के मर्म को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। हर मानव जो इस दुनिया में जन्म लिया है, उसका मुख्य कार्य ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। इस भांति हमारे लिए सर्वप्रथम सुसमाचार स्वयं हमारा जीवन है, क्योंकि इसकी मांग हमने नहीं की है, बल्कि यह हमें ईश्वरीय कृपा में मिली है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। हमारे जीवन की इस कृपा को हमें दूसरों के संग यह घोषित करते हुए साझा करने की जरूरत है कि जिस ईश्वर से हमने जीवन की सौगात पाई है, वे हमें जीवन देने के लिए मर गए, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। अतः हम सभी जीवित ईश्वर के संतान हैं, जिन्हें नए जीवन, जीवन के उत्साह, जोश और उमंग को दूसरों के संग साझा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सभी ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे के संग बांटने हेतु बुलाए गए हैं, जो सारी मानवता के लिए खुशहाली, अमन चैन और शांति का कारण बनती है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हम जीवन की खुशी को ईश्वर के चमत्कारी असंख्य मछली पकड़े जाने में व्यक्त पाते हैं। सिमोन और उनके साथियों ने गेनेसरेत झील में मछली पकड़ने हेतु रात भर मेहनत की, लेकिन उन्हें निराशा के अलावे कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे निराशा की स्थिति में यीशु उनकी अगुवाई करते और पुनः जाल डालने को कहते हैं। सिमोन अपने हृदय की बातों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गुरुवर, हमने रात भर मेहनत की लेकिन हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हम में से कितने हैं जो रात भर की थकान के बाद पुनः किसी के कहने पर अपने कार्यों को फिर से शुरू करने को तैयार होंगे? शायद बिरले ही। लेकिन सिमोन स्वामी की बातों में विश्वास करते और उसके निर्देश में अपनी थकान के बावजूद कार्य करते हैं, जो उनके लिए बहुतायत में फलदायक होता है। श्रोताओं, यीशु की बातों को सुनना हमसे नम्रता और दीनता की मांग करती है, जो उनके ऊपर हमारे विश्वास को व्यक्त करता है। ईश्वर के वचनों को सुनते हुए विश्वास में किए गए कार्यों को हम आज के सुसमाचार में देख सकते हैं। अतः आज का प्रभु संदेश हमारे लिए यही है कि यीशु हमें भरपूर जीवन देने आते हैं, बशर्ते कि हम उसे अपने में लेने की चाह रखते हों, जो हमसे उनकी बातों को सुनने की मांग करती है। वे हमें अपने जीवन को दूसरों के संग बांटने के लिए बुलाते हैं, जिसे यीशु मनुष्यों के मछुआरे बनना कहते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा अपने दूसरे भाई बहनों की आत्माओं को बचाने हेतु बुलाए जाते हैं जो ईश्वर से दूर चले गए हैं। आइए हम प्रभु से निवेदन करें, वे हमारे विश्वास के जालों को मजबूत करें, जिससे हम उन्हें जीवन के गहरे समुद्र में फेंकते हुए डूबती हुई आत्माओं को ईश्वर के लिए बचा सकें।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। दिसंबर में स्पेन के सेविले में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा एवं लोकप्रिय धम्मपरायणता सम्मेलन की कार्यकारी समिति के साथ अपनी मुलाकात में पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया, विशेषकर परिवारों के भीतर तथा एक दूसरे के प्रति भरपूर प्रेम एवं सम्मान दिखाने पर जोर दिया। पोप ने अपने भाषण की शुरुआत में स्पेन के सेविले में 4 से 8 दिसंबर 2024 को आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा एवं लोकप्रिय धम्मपरायणता सम्मेलन की समिति का इस जयंती वर्ष में तीर्थयात्रियों के रूप में स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और स्वीकार किया कि वे अपने सम्मेलन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने आए हैं। अपने टिप्पणी में संत पापा ने उन्हें अपने कार्यक्रम को प्रशंसा की प्रार्थना के रूप में जीने के लिए दिए गए निमंत्रण को याद किया, जो ईश्वर और हमारे भाइयों एवं बहनों की ओर यात्रा की तरह हमारी सांसारिक यात्रा के साथ है, और उनसे इतने अधिक प्रेम के साक्षी बनने के लिए कहा कि यह पागल लग सकता है, प्यार से पागल। संत पापा ने कहा, इस आयोजन के समापन पर यह कितना अच्छा होगा कि यदि इसमें से पहली प्रतिध्वनि विशेष रूप से परिवारों के भीतर सुनी जा सके। उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, इससे एक प्रार्थना की गूंजती हुई खामोशी के रूप में सुनी जाए, जो हर किसी को आंसू बहाने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि यह हृदय से आती है, चाहे वह आपके भाईचारे के संरक्षक की छवि के सामने, आपकी पल्ली के पौत्र संदूक के सामने, बीमारों के बिस्तर के पास या बुजुर्गों की संगति में हो। पोप ने बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के उनके परोपकारी कार्यों को स्वीकार किया और उनके लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इस कार्य में हमेशा एक प्रेमपूर्ण हृदय की धड़कन सुनाई दे। इस अर्थ में पोप ने मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने और दूसरों की देखभाल करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। अंत में पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की कि यीशु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, मरियम उनकी देखभाल करें और उनसे प्रार्थना करने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने मानव तस्करी का विरोध करते हुए मानव तस्करी के शिकार लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। 8 फरवरी को जब मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, पोप फ्रांसिस ने अपने 2-1 संदेशों में मानव तस्करी के पीड़ितों की याद की है। उन्होंने अपने पहले संदेश में लिखा, संत जोसफिन बकीता एक मानव तस्करी पीड़िता थी। उनकी कहानी दिखलाती है कि प्रभु की कृपा हमें जंजीरों को तोड़ने, पुनः आजादी पाने और कठिनाई में पड़े अन्य लोगों को आशा का संदेश देने में मदद करती है। अपने दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, आइए हम मानव तस्करी के शिकार लोगों की बात ध्यान से उस सहानुभूति पूर्वक सुने ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल सके और उनके साथ मिलकर दूसरों को मुक्त कराने और इस अपराध को रोकने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढे जा सकें। और इस सप्ताह पूर्वी कलीसिया के मुख्य समाचार हैं। फ्रांसीसी भाषा के कात्तिक स्कूलों की काहिरा में बैठक आयोजित की गई। यूरोपीय संघ ने आर्मेनिया में अपने पर्यवेक्षक मिशन का विस्तार किया तथा इथोपिया में कात्तिक समुदाय को अपना नया धर्माध्यक्ष मिला।
स्पेन में बुलाहट पर 3 दिवसीय कांग्रेस के प्रतिभागियों को संत पापा फ्रांसिस ने हमेशा अपनी प्रतिभाओं को फल देने के लिए आमंत्रित किया। यह अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य है। संत पापा कहते हैं, जहां भी ईश्वर आपको भेजे उसे साथ लेकर जाएं। अपने कार्यालय में, अपने परिवार में, अपनी प्रेरिताई में। यह कांग्रेस 7 से 9 फरवरी तक मैड्रिड में हो रही है और इसमें 70 स्पानी धर्म प्रांतों से 3000 लोग शामिल हुए हैं, जिनके साथ 65 धर्माध्यक्ष भी हैं। बाइबल के अमीर युवक के बारे में दिए गए विवरण का हवाला देते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें इस सवाल पर मसीह की प्रतिक्रिया पर विचार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सभी अनुग्रह और प्रकृति के उपहारों के संरक्षक हैं, जिसे प्रभु ने हमें दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति को साझा किया जाना चाहिए ताकि उनका लाभ दूसरों तक पहुँचे। और संत पापा फ्रांसिस ने भारत की कलीसिया के लिए 3 नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। संत पापा ने धर्माध्यक्ष उद्दू माला बाला शोरेड्डी को विशाखापट्टनम के मेट्रोपॉलिटन महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। अब तक वे वारंगल के धर्माध्यक्ष थे। धर्माध्यक्ष उद्दू बाला का जन्म 18 जून 1954 को गुट्टूर में हुआ था। 20 फरवरी 1979 को उन्हें वारंगल धर्म प्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया। 13 अप्रैल 2013 को उसी धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 से 9 अप्रैल 2024 तक वे खम्मम के प्रेरितिक प्रशासक भी थे। और संत पापा फ्रांसिस ने 8 फरवरी को जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष के रूप में फादर फेबियन टोप्पो को नियुक्त किया है, जो अब तक कलकत्ता के मॉर्निंग स्टार क्षेत्रीय सेमिनरी और कॉलेज के प्रोफेसर और आध्यात्मिक निदेशक रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष फेबियन टोप्पो का जन्म 21 दिसंबर 1960 को छत्तीसगढ़ के जशपुर धर्म प्रांत के दारूपीसा में हुआ था। 3 दिसंबर 1994 को जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। पुरोहित बनने के बाद उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। जलपाईगुड़ी में कैंडिडेट हाउस के निदेशक और क्रिश्चियन एकता वर्धक और अंतरधार्मिक संवाद के लिए गठित समिति के निदेशक, मोंगरागनी में शांति रानी पल्ली के पल्ली पुरोहित और कलकत्ता में मॉर्निंग स्टार क्षेत्रीय सेमिनरी और कॉलेज के प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। और संत पापा फ्रांसिस ने आज शिलोंग महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में उसी महाधर्म प्रांत के धर्म प्रांतीय पुरोहित फादर बर्नार्ड लालू को नियुक्त किया, जो अब तक शिलोंग मेट्रोपॉलिटन महाधर्म प्रांत के चांसलर और लैटुंग ख्राह में ख्रिस्तियों की सहायिका माता मरियम गिरजाघर के पल्ली पुरोहित रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष बर्नार्ड लालू का जन्म 16 जून 1976 को मेघालय के लैटलिंग कोट में हुआ। 30 अप्रैल 2006 को शिलोंग महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।